आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो कि चैप्टर बेस्ड है हमारा इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री यानी औद्योगिकरण। चैप्टर नंबर 6, औद्योगिक परिदृश्य। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि औद्योगिक परिदृश्य जो होता है, ये वर्ड क्या है। औद्योगिक मतलब हम सभी जानते हैं उद्योग, उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज, जो कि हम फैक्ट्रीज वगैरह देखते हैं, या कहें कि ये सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो हम सिटीज़ में नहीं देखते हैं, वो बॉर्डर एरिया, एक इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ पर देखते हैं। और परिदृश्य एक तरीके की कह सकते हैं पूरा एक जो स्टैब्लिश्ड होता है ना, जैसे कि ये सारी इंडस्ट्री किस तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, क्या इसका मेन फीचर है, जो पूरी सारी इसका एक पूरा एक विजन है, क्या चीज़ें एक किस मोटिव से बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी परिदृश्य में। स्टार्ट करेंगे हम जब अपना चैप्टर, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो भी ये तीन तीन सेक्टर्स, हमें पता है ना कि जो हमारी इकोनॉमी है वो तीन सेक्टर्स में डिवाइडेड है। हमारी इकोनॉमी, आर्थिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी, आपने ये चीज़ तो सुनी होगी ना कि हमारा एक यूनियन बजट आता है, वो बजट किस चीज़ पे आता है और उस बजट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले आर्थिक वर्ड जो है उसको समझने के लिए आर्थिक, उसके बाद उसके अंदर जो तीन सेक्टर्स आते हैं, उन तीन सेक्टर्स में से ही एक सेक्टर है। तो हम फॉर द वेरी बिगनिंग हम समझेंगे कि आर्थिक क्या है, ताकि उसे हम समझ सकें कि जो इंडस्ट्री है वो हमारी आर्थिक, हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम यूनियन बजट का, क्योंकि यूनियन बजट जो है वो हमारे इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। जब भी हम बात करते हैं यूनियन बजट की, तो वो एक तरीके से क्या होता है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड होता है इसलिए कि उन्होंने किस चीज़ में सुधार किए हैं, क्या चीज़ बढ़ाई है, क्या चीज़ घटाई है। यूनियन बजट में देश में बड़े से बड़े, जिसमें से कह सकते हैं रेल मंत्रालय है ना, रेल से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें, वो से लेके एक सुई तक की रेट जो है वो दोबारा से बनाई जाती है। दोबारा से बनाए जाने का मतलब ये है हर चीज़ का टैक्स रेट, हर चीज़ चेक की जाती है और उसके हिसाब से फिर उसके प्राइजेस जो हैं वो तय कर दिए जाते हैं। इसमें हर एक साल पे ये चीज़ होती है, क्योंकि हर एक साल पे अकबक के बाद जो है स्थिति वो एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती है, इसलिए तो उससे हमारे कह सकते हैं इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। इतनी बात समझ में आई। अब इकोनॉमी जो है वो हमारी तीन सेक्टर्स में डिवाइडेड है, और ये सब हम जानते हैं, एक पिरामिड के थ्रू हम बना के बहुत बार सीख भी चुके हैं कि सबसे पहला जो होता है वो है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक। प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोई सोच सकता है? प्राथमिक, जैसा कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है, इसमें कृषि से जुड़े जितने भी रॉ मटेरियल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी आती हैं। और रॉ मटेरियल ही नहीं, इसमें पशुपालन भी आता है, जैसे मत्स्य पालन वगैरह जितनी भी चीज़ें आ गई हैं वो सारी इसी में आती हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि ये रॉ मटेरियल तो हो गया, पर ये किस चीज़ के लिए रॉ मटेरियल। तो जब हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, द्वितीय क्षेत्र की, तो वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या, वही रॉ मटेरियल जो है उसको हमारे यूज़ के लायक बनाना। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हमें अगर कोई जड़ी बूटी मिल रही है या साग पत्ते, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हम सीधे खेत से लाते हैं और इसे बना देते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका यूज़ जो है वो हम फैक्ट्री पे वाले से देते हैं, फिर वो बनता है, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गन्ना, गन्ना हम वैसे तो इसे खाते हैं डायरेक्टली, वो एक अलग यूज़ हो गया। और गन्ने से जब चीनी बनती है तो वो कैसे बनती है, उसे हम घर में नहीं बनाते, वो फैक्ट्री जाती है, उसके बाद जो है गन्ने के रस से चीनी बनती है और उससे हम बहुत सारे फिर इस्तेमाल में लेते हैं। तो ये हो गया इंडस्ट्री का दूसरा यूज। अब बात करते हैं तीसरा, क्या तीसरा आ जाता है कि अगर मान लीजिए चीनी बन गई, लेकिन वो जहाँ पे कारखाना है वहीं तक रह गई, अब उसके बाद अगर वहाँ से उसे सर्विस, मतलब कि उसे ट्रक वगैरह के माल ढुलाई के तरीके से नहीं लेके आया जाएगा, और उसके बाद उन्हें दुकानों में जो दुकानदार है नहीं खरीदेंगे, और उसके बाद हम एज अ कंज्यूमर हम लोग उसे नहीं खरीदेंगे, तब तक वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा। तो बीच में ये लोग जो सर्विस देते हैं ना, जो सुविधाएं हमें देते हैं कि एक जगह से जो भी माल बन रहा है उसको जगह जगह पहुंचाना, पूरे इंडिया में बिखेर देना, ये कहलाता है हमारा तृतीय क्षेत्र, जो कि हमें सर्विस सेक्टर भी कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये हमें कोई चीज़ बनाता नहीं है, हमें सर्विस देता है। सर्विस किसी भी तरीके की हो सकती है, जिसमें इंक्लूड कर देते हैं हम सोने से बने जो जेवर हो गए, बिस्कुट या चाय, कॉफ़ी। प्रत्यक्ष क्षेत्रक में ये सारी चीज़ें जो बिकती हैं वो आते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं वो द्वितीय क्षेत्रक में होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि औद्योगिक जो हमारा परिदृश्य है वो किस तरीके से इसका फैलाव है, क्या क्या इसके और बहुत सारे भाग हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है मेन हमें देखिए या इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसमें वस्तुओं का निर्माण, एक वर्ड आप जैसे हम हाईलाइट करते हैं ना कि किसी भी चीज़ में क्या एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इसका मेन वो है, बेस है, तो हमारे औद्योगिकी का है कि वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वस्तु वो चीज़ पहले भी थी कृषि में भी, लेकिन वो चीज़ हमने दोबारा से क्या बनाई है, इस्तेमाल के योग्य बनाई है, ठीक है, यानी कि कमोडिटी बनाई है। कमोडिटी और गुड्स में एक सबसे बड़ा अंतर यही होता है, जब भी कोई चीज़ हमारे कृषि क्षेत्र में होती है तो हम उसे गुड्स बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो हम उसे चेंज करते हैं, उसे औद्योगिकी से कह सकते हैं और ज़्यादा उसका यूज़फुल बनाते हैं, तो हम उसे कमोडिटी भी कहते हैं। कमोडिटी उस वर्ड के लिए लगाया जाता है जब हम उसे बाजार में बेचने के लिए बनाते हैं, ना कि अपने इस्तेमाल के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है वो सिर्फ क्या वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे कृषि क्षेत्र तक ही है, या उसके और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसा कि एक एग्जांपल से मैं बताऊंगी, सबसे पहले कि हम जब अपने गांव जाया करते थे तो वहां पर जो है सारी मछलियां, वैसे तो मछली पालन में होता है कि मछली यहां से जो भी समुद्र किनारे से है वो ली और उसके बाद उसे वहीं वहीं बेच दी मछुआरों ने, लेकिन वहाँ एक और सिस्टम हमें देखने को मिला था और ये बहुत साल पुराने से है ये सिस्टम बंगाल की तरफ में, कि हमेशा जो वो मछलियाँ हैं वो एक डब्बे में पैक्ड होती हैं और वो पैक्ड मछलियाँ भी जो है वो मिलती हैं। ये बंगाल में नहीं, वैसे तो ये हर जगह मिलती हैं, पर मोस्ट कॉमन तो हम लोग वैसे ही लेते हैं। तो जो पैक्ड मछलियों का चलन है वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से मत्स्य पालन तो है ही कि हाँ मत्स्य को किसी ना किसी मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा होगा, लेकिन वो भी चीज़ जो है फैक्ट्री में गई और उसके बाद किसी दुकानदार ने उसे बेची। इसमें तीनों क्षेत्रों का यूज़ हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे तीन क्षेत्र जो हैं वो हमें सुनने में बहुत आसान लगते हैं, पर इनका जो एरिया है वो बहुत वाइड है। उसके बाद बात करते हैं कि कौशल विकास योजना जो है वो किस तरीके से हमारे औद्योगिकी को और ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि पहले भी बहुत स्किल थे, लेकिन इंडिया में अगर आप हम बात करें कि हमारे पुराने टाइम में जब आज़ादी का वक्त था तो उस वक्त पर क्यों हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ख़राब गई, वो ये हुआ। अब थोड़ा मैं हिस्ट्री का फैक्टर लेके जा रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि इंडिया में औद्योगिकी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना उसमें इंडस्ट्री सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, वो क्यों दी गई थी। चलिए अब हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाते हैं ताकि आपको पता चले चीज़ के बारे में। इंडिया जो था वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं रिच कंट्री था उस दौर का। सोने की चिड़िया सुना होगा ना आपने वर्ड, कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। वहाँ पे हर चीज़ की कह सकते हैं कोई भी कमी नहीं थी, इंडिया बहुत रिच था। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या क्या फेमस थी, यहाँ का सूती, यहाँ का मलमल, यहाँ के डिज़ाइन, यहाँ का नील, यहाँ के मसाले, हर चीज़। उस टाइम पे यात्रियों का चलन हुआ करता था और बहुत सारे विदेशी यात्री जो थे वो इंडिया आया करते थे, तो वहीं से कुछ और विदेशी यात्री जो है वो इंडिया आए और उन्हें भारत में जो मसाले हैं साउथ की साइड पे सबसे ज़्यादा, वहाँ पे उन्होंने मसाले जब है चखे तो उन्हें बहुत स्वाद आया। आज भी इंडिया का मसालों की तरफ से बहुत नाम है, तो वो चीज़ जो है वो अपने मसाले जो हैं वो सबसे पहले ले गए विदेश में थोड़े टेस्ट करने के लिए, बेचने के लिए। वो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट में बिके क्योंकि वो बहुत कह सकते हैं स्वाद था। उसके बाद उन्होंने एक डील करी इंडिया के राजा, साउथ के राजा के साथ, कि आप मुझे ये जितने भी मसाले हैं आप बाज़ार में इन्हें जिस रेट पर बेचते हैं मैं आपको इसका 3 गुना दूंगा, आप मुझे भी ये बेचें मसाले। और उन्होंने वो मसाले जो वहाँ के राजा थे उन्होंने वो मसाले काली मिर्च, इलायची, जितने भी मसाले थे वो सारे उन्हें बेचे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें 3 गुना ज़्यादा प्राइस मिल रहा था जितने पे वो बेचते हैं। तो इससे क्या हुआ, और वही जब उन्होंने खरीद की उन अंग्रेज यात्री ने, उसके बाद वही आकर अपने देश में उन्होंने बेचा 60 गुना ज़्यादा दामों में। सोचिए 3 गुना और 60 गुना कितना ज़्यादा अंतर है, और लोगों ने खरीदे भी, क्योंकि इंडिया की कंडीशन जो थी वो बेशक वो अमीर देश था पर उसमें बहुत बड़ा अंतर था अमीर और गरीबी में। वो जब विदेशों में बेचा गया तो बहुत, कहते हैं कि विदेशों में से काला सोना कहा जाता था, काली मिर्च को काला सोना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दामों में बिका। इस तरीके से सबसे पहले जो है व्यापारियों ने शुरुआत करी सामान बेचने और खरीदने की। जब ब्रिटिश इंडिया का दौर आया तो वो एक ऐसे ही कह सकते हैं व्यापारी कंपनी बनकर आई, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाने लग गए, और फैक्ट्रियां लगाने के साथ साथ फिर उन्होंने अपनी सेना भी पालना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी सेना मेंटेन करी तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके खुद शासन ना करते हुए जितने भी राजा थे उनके साथ एडजस्टमेंट्स शुरू कर दी। और ये एडजस्टमेंट सबसे पहले हम कहते हैं कि ये बंगाल की तरफ से, बंगाल एक ऐसा राज्य था जिसे जीत लेना बहुत बड़ा, इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, आज का झारखंड, उड़ीसा, ये जितना भी है उत्तर प्रदेश का इलाका, ये बांग्लादेश का, और जो अभी वेस्ट बंगाल है ये सारा बंगाल का पार्ट था, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये सारा एरिया जो है वो सारा अब अंग्रेजों के अंडर आ गया था युद्ध के बाद। इसके बाद यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगना जब चालू हुआ, क्योंकि भारत से क्या किया जाता था, रॉ मटेरियल, प्राथमिक क्षेत्र का जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है रॉ मटेरियल्स, वो लेना लिया जाना शुरू करने लग गए। और उसी दौरान मैनचेस्टर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री स्टेप, वहाँ पे औद्योगिकरण का दौर, औद्योगिक क्रांति वहाँ चल रही थी, तो वहाँ उन्हें बस अंधाधुंध जो था रॉ मटेरियल चाहिए था, वो बहुत तेज़ी से जो है कपड़ा बना रहे थे, क्योंकि एज द सेम टाइम यहाँ पे क्या हुआ भारत में, यहाँ पे भी हाथ से लेकिन वो कपड़ा बनाया जाता था, वो कपड़ा बहुत मेहनत से बनाया जाता था हाथ से, चरखे से चला करके, और उस पर डिज़ाइन या सब चीज़ जो है वो बुनकर कारीगर, ये सारी चीज़ें होती थी, और यहाँ के लोग वो चीज़ें खरीदते भी थे। लेकिन जब यहाँ का रॉ मटेरियल जो है वो विदेश जाने लग गया, और वहाँ से बना बनाया जो कपड़ा है उसी रॉ मटेरियल का जो इंडिया से जाता था आने लग गया, वो सस्ता भी है, वो मजबूत भी है, तो यहाँ के लोग जो इंडिया के लोग थे वो उसे खरीदने लग गए। और इस तरीके से क्या हुआ, जो यहाँ के वर्क, जो यहाँ के बुनकर थे, जो यहाँ के हथकरघा बुनकर थे, उनका काम ठप हो गया, जो यहाँ के नील की खेती से नील का रंग जो इस्तेमाल किया जाता था वो भी अब वहाँ जाने लग गया, और उस नील की खेती से जो डिज़ाइन होते थे नील से वो भी यहाँ अलग अलग प्रकार के मिलने लग गए। तो जो डिज़ाइनर चीज़ें जो हाथ से और मशीन से, आप खुद देखेंगे कि मशीन और हाथ का कितना फ़र्क होता है, तो वही फ़र्क उस टाइम पे लोगों ने देखा, क्योंकि लोग गरीब भी थे, तो इसीलिए उन्होंने जो सस्ता मिलेगा ऑब्वियसली लोग वही लेंगे, तो उन्होंने लिया। इस तरीके से जो है इंडस्ट्री का फ़र्क देखा गया, और ये धीरे धीरे 200 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, ये गैप देखा गया, और भारत की हालत जो है वो खस्ता होती चली गई। सबसे पहले अहमदाबाद में मील, बंगाल में मील, उसके बाद नीचे की तरफ हमारे दक्षिण की तरफ मील लगाई गई, इस तरीके से जो है एक पूरा घेराव किया गया। उसके बाद रेल की पटरियाँ और जाल बिछाया गया, ताकि हर जगह, कह सकते पूरा जाल बिछा करके हर जगह जो है विदेशी सामान वो पहुँच जाए। तो ये था हमारा पूरा एक ग्लिम्प्स कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री है उसने इम्पैक्ट किया। आप इस पूरे का जितना भी मैंने बताया हिस्ट्री का जोन, उसमें आप सिर्फ ये देखिए जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि किस तरीके से जब इंडस्ट्री का सामान बन के आया तो जो हथकरघा या बुनकर जो थे उनका किस तरीके से जो है कारोबार एकदम ठप हो गया। यही रीज़न है कि इतने बढ़ते हुए, इतनी रफ्तार, इतने कंपटीशन के टाइम पे, जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम अब आ गया है पूरे विश्व में, तो इंडिया अपने सिर्फ हैंडमेड, कह सकते हैं हाथ की कारीगरी से नहीं कर सकती काम, और वो सिर्फ कृषि से भी डिपेंड नहीं हो सकती। कृषि में 70% लोग हैं लेकिन फिर भी वो नहीं भर सकते अपना पेट, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री की, और इसीलिए जो है ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं स्किल इंडिया वगैरह के, ये चलाए जाते हैं ताकि एक कह सकते हैं बेसिक सबको कौशल आता हो, स्किल आता हो, ताकि वो इंडस्ट्री में अपना किसी न किसी तरीके से जो है योगदान दे सकें। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, जिसमें से उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम है, व्यवसायिक कौशल विकास कार्यक्रम है BSDP जिसे कहते हैं, औद्योगिक प्रेरक अभियान है, ये सारे जितने भी हैं ये शैक्षिक प्रशिक्षण होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल कराई जाती हैं, ताकि हम उसे सीखें और फिर उसे सीख करके हम स्किल, मतलब अपनी स्किल को इस्तेमाल कर सकें। अब इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि सारी फैक्ट्रियाँ एक तरीके की नहीं होती। एक तरीके से मतलब है कि कुछ छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, कुछ बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। जैसे कि अब अगर लोहे के कारखाने देखो, लोहे के सामान के बनने के तो बड़े कारखाने होते हैं, लेकिन अगर रुई के कारखाने आप देखो तो वो छोटे भी होते हैं। रुई या उससे जुड़े और भी कितने भी बहुत सारे कारखाने ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे माचिस के कारखाने, पटाखे के कारखाने। सबसे पहले आ जाता है हमारा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग से हम सब समझते हैं कुटीर मतलब कुटिया, कुटिया। तो कुटिया से क्या, कुटिया मतलब कि घर, तो यानी कि घरेलू उत्पाद होते हैं। इसमें जो परिवार के सदस्य होते हैं ना, वही अपना कुछ भी ऐसे कह सकते हैं कि वो मुर्गी पालन या फिर टोकरी बुनाई या स्वेटर बुनना, लकड़ी के उपकरण जो होते हैं, बेस है मिट्टी के, आप देखते हैं शहरों में या कहीं भी कुम्हार जो होते हैं, जिनसे हम दिवाली में दिए वगैरह लेते हैं या फिर गर्मी के टाइम पे घड़े वगैरह खरीदते हैं, वो देखेंगे उनकी पूरी फैमिली होती है, वो सिर्फ वही काम करते हैं, वो आज भी अपने ट्रेडिशन को जो है फॉलो करते हैं। तो वो हो गए कुटीर उद्योग। उसके बाद बात करते हैं कि लघु उद्योग क्या होते हैं। लघु मतलब कि छोटा, तो मतलब कि छोटे पैमाने के उद्योग, जिसकी मैंने अभी बात करी, जिसमें लगभग आप लगा लीजिए कि इसमें एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, 10 से 100, 10 से 100 एम्प्लॉयज़ होते हैं। छोटा सा कारखाना होता है, ज़्यादा मशीनें नहीं होती हैं और ज़्यादा इसमें मैन पावर का यूज़ कराया जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि बड़े उद्योग जो होते हैं वृहत आकार के, वृहत मतलब कि बड़ा, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। इस ये बड़े तरीके की, इसको तो ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं कि किस तरीके के इंडस्ट्रीज़ को हम बड़ा कहते हैं। अब इन दोनों फैक्टर में एक और चीज़ पढ़ने वाली ये है कि अगर हम देखें दोनों में, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि आप जो हमारे कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, वृहत आकार के उद्योग है, इन दोनों, इन तीनों के बीच में क्या पॉइंट्स कॉमन है और क्या पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट है। तो कॉमन पॉइंट्स ये है कि ये तीनों ही जो है वो द्वितीय क्षेत्र में है। सबसे पहला पॉइंट, ये तीनों ही किसी ना किसी चीज़ को जो है चेंज करके एक कमोडिटी बना रहे हैं, और ये तीनों ही जो है एक तरीके से अपना एफर्ट डाल के, अपना मेहनत डाल के इसमें जो है अपना कह सकते हैं अपनी इनकम भी बना रहे हैं उसी के थ्रू। तो ये तीनों सेक्टर, तीनों जो कह सकते हैं उद्योगों में कॉमन चीज़ है। लेकिन जो हमारा कुटीर उद्योग है उसमें फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब कि वो कहीं से उनका जो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ रखने का खर्च है वो नहीं होता, ठीक है, सबसे पहली बात। सेकंड, अब अगर हम लघु उद्योग की बात करें तो उसमें बहुत कम, यानी कि 10 से 100 एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, वहाँ मशीनरी जो है वो कम रखी जाती है या नहीं रखी जाती, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके अलावा वहाँ पर कैपिटल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। कैपिटल मतलब कि वो अमाउंट जब हम खर्च करते हैं, ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बड़ा उद्योग होगा, कम पैसा लगाएंगे तो कम उद्योग होगा, तो कम खर्च करना पड़ता है। मैन पावर जो इंसानों की ऊर्जा है उसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे ये है। और इसके अलावा वृहत आकार के में क्या है, वहाँ पे मशीन ज़्यादा होते हैं, वहाँ मशीनों का खर्च ज़्यादा होता है, वहाँ कैपिटल ज़्यादा लगता है और वहाँ पर जो है हमें ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो कुल मिला के जो वृहत आकार का है इस्टेब्लिश करना होता है अगर उद्योग, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल या पैसा जो है लगता है, लेकिन से प्रॉफिट के अमाउंट भी जो है वो ज़्यादा होता है। और लघु उद्योग में जितना उसमें हमारा प्रॉफिट जितना भी हम बनाते हैं उस हिसाब से, और कुटीर उद्योग में भी उसी के हिसाब से जितना उसमें लगाया जाता है इनपुट वो। और सबसे ज़्यादा वृहत आकार के एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं लोहा, इस्पात, ऑटोमोबाइल्स, ये जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं ये। अब बात करते हैं कि इन सब के ओनर्स कौन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बड़े इंडस्ट्रीज की, तो उसमें बहुत रेयर ही हमने देखा है कि उसमें कोई एक ओनर हो, क्योंकि वहाँ पे जो कह सकते हैं नुकसान होता है ना, फिर वो एक इंसान को बियर करना पड़ता है। और भारी जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी, आपने शेयर वर्ड सुना है ना, शेयर, इतनी कंपनी के इतने शेयर्स, वो खैर अभी बात किया था आपको समझ शायद ना पाए, तो जो शेयर्स है वो इसी लेते हैं कि कंपनी में इतने परसेंट की हिस्सेदारी, ये इकोनॉमिक टर्म्स वाली बात आ गई कि कंपनी में जैसे किसी ने 51% ले लिया है। जैसे हम जब प्रोबेबिलिटी प्रायिकता करते हैं ना, तो प्रायिकता में क्या करते हैं हम कि हमने जैसे कि एक सेब लिया और हमने उसे 4 लोगों को देना है, तो हमने बीच से उसे काटा। अब एक हिस्सा एक का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे का, तो 4 हिस्से हो गए, वो मिलाएंगे तो फिर वो दोबारा से एक सेब बन जाएगा। सेम वही चीज़ है इसमें भी, ये बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें वैसे ही पार्टनर, लेकिन उस सेब के हिस्सेदार को हम उसमें पार्टनर बोलेंगे, और जो टुकड़ा उन्होंने लिया है उसको बोलेंगे हम शेयर, ठीक है। तो वो जो शेयर है, अब वो चाहे वो 20% हो, 2% हो, 4% हो, कुछ भी हो, और शेयर गिरने कैसे होते हैं, गिरता कैसे है? अगर किसी ने मान लीजिए शेयर खरीदा है इस कंपनी में, और वो जो है वो कंपनी को इस बार उसने जब वो सामान बनाया तो बिका नहीं, बिका नहीं तो प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर गिर गया, प्रॉफिट नहीं होगा तो देंगे क्या, तो वो जो शेयर है वो गिर गया तो नुकसान हो गया, और अगर प्रॉफिट हो गया तो यानी कि उनकी कमाई हो गई। तो ये शेयर का नॉर्मल सा एक रूल है। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब कि जो प्राइवेट होते हैं ना सेक्टर, जिसमें एक इंसान या उस दो तीन व्यक्तियों का जो समूह है जिसे बिजनेस पार्टनर या शेयर होल्डर कहते हैं वो, तो वो निजी क्षेत्र हो गया। और दूसरा हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, जो सबके लिए हो, सर्वजन के लिए हो, तो वो हो गया हमारा गवर्नमेंट, जिसको सरकार के अंडर होता है वो। संयुक्त क्षेत्र, अब जिसमें संचालन जो है वो निजी हाथों में भी है और सरकारी में भी है, मतलब कि जो दोनों के, सरकार के और निजी दोनों से चल रहा है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो कह सकते हैं कि जो भी हमारा स्कूल्स हैं, जैसे कि आप ले लीजिए तो आदर्श ले लीजिए, वो प्राइवेट भी है और उसके साथ साथ उसमें सरकारी का कंट्रीब्यूशन एफिलिएटेड सरकारी से भी। और वहीं अगर बात करें हम सहकारी की, तो इसका सबसे अच्छा है, हमारा एग्जाम्पल है अमूल, जो बहुत सालों से जो है एक सहकारी कह सकते हैं क्षेत्र की तरह वो वर्क कर रहा है। अमूल, जिसका अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया मिल्क है ना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो अमूल है उसका जो कह सकते हैं एक तरीके से वो जो आया है, इवोल्यूशन हुआ है उसका, राजस्थान से ही हुआ है। और इसी के साथ मैं अभी ये चलो एक असाइनमेंट दे देती हूँ इसी पे, असाइनमेंट मतलब कि इसके बारे में जो जानकारियाँ बटोरनी है कि अमूल जो है, आप देखते होंगे कि ये जो अमूल का है एक बहुत सालों से, बहुत ज़्यादा सालों से आप कह लीजिए, आप लगा लीजिए कि मतलब इंदिरा गांधी या उससे पहले के ज़माने से अमूल का जो है ना एक हमेशा अखबार के कॉर्नर में कार्टून आता है, जो अब तक आता है द हिंदू में अगर आप देखेंगे तो, किसी भी पॉलिटिकल इशू या कुछ भी वो करंट अफेयर से रिलेटेड जो होता है उस पर हमेशा आता है। तो आप वो ज़रा चेक करें, अमूल के बारे में आप थोड़ा पढ़ें, क्योंकि सच में वो जो कंपनी है किस तरीके से इवॉल्व हुई है और किस तरीके से उसका जो ये कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट है, किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, पूरे कह सकते हैं प्रोडक्ट ही नहीं, उनका इन्वॉल्वमेंट देश के जो है बहुत अच्छे टाइम पीरियड में भी रहा है, एक रिएक्ट मीडिया का एक बहुत अच्छा सोर्स जिसे कहें हम, जागरूकता, जन जागरूकता का वो भी रहा है। तो आप इसके बारे में जानिए अगर इंटरेस्टेड हो तो। उसके बाद हम मूव करते हैं कि हमारे जो कच्चे माल, क्योंकि इंडस्ट्री है तो कच्चा माल तो चाहिए ही, कच्चे माल के जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमें बहुत क्लियर है ये चीज़ कि कहाँ से है। एक तो सबसे पहले सारे प्राइमरी सेक्टर से है ना, नहीं प्राइमरी सेक्टर से नहीं है तो मन में और कहाँ से डाउट आ रहे हैं कि और कौन से सेक्टर से होंगे, प्राइमरी सेक्टर से ही होंगे। कृषि आधारित में सबसे पहले आ जाता है हमारा सूती, सूती वस्त्र, शक्कर, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किससे बनती हैं, कृषि आधारित से, जैसे कि कपास से बनते हैं हमारा सूती वस्त्र और शक्कर बनती है गन्ने के रस से, गन्ने से। समुद्र आधारित की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जितने मछली का तेल और जितने भी कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल फूड होते हैं ना, वो सारे हमारे समुद्र आधारित ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि खनिज आधारित कौन से होते हैं, खनिज जो खनन करके बनाए जाते हैं, सब जो वर्ड है उसका कहीं ना कहीं उनके इवोल्यूशन से रिलेटेड ही है कुछ ना कुछ। तो खनिज मतलब खनन करके, जिसमें अयस्क, आभूषण, आपकी ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें आती हैं। और वन, वन से तो बहुत भरमार है चीज़ों का, शहद ले लीजिए, औषधि, कागज़, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो वन से ही आती हैं। उसके बाद इसी तरह हम उसे ग्रीन गोल्ड कहते हैं, वन को। उसके बाद बात करते हैं कि कृषि आधारित जो उद्योग है वो सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि कृषि आधारित उद्योग जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, राइट? इसके बारे में सबसे पहले तो हम ये फिर भी एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है, हम इसे अभी इतना टेक इट ईजी क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हमें हमारे इंडिया के अंदर ही मिल जाता है, जो कि अगर हमें हमारे इंडिया के अंदर ये रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते तो शायद हमारे लिए एक बड़ा चिंता या डिबेट का विषय होता। लेकिन क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो इसीलिए हमें रॉ मटेरियल्स की चिंता नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो बाहर विदेश से मंगाए जाते हैं, स्पेशली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, उसमें जब हम बात करते हैं पार्ट्स की, मतलब पार्ट्स हमारे बॉडी पार्ट्स की नहीं, हम बात करते हैं जब किसी भी जैसे कार की या फिर फोन्स की, या फिर बात करते हैं हम अपने जब हमारे जितने भी डिफेंस रिलेटेड हमारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह हो गए हैं, इन सब चीज़ों की बात करें तो इनके कुछ कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जो हमें विदेशों से क्या करने पड़ते हैं, इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। इम्पोर्ट कहते हैं जब हम किसी चीज़ का आयात करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि हम उसे निर्यात कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम अपना मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पे, जो कि हमारा लघु कुटीर उद्योग का विकास। अब लघु कुटीर उद्योग का विकास क्या, सबसे पहले बात तो ये, और ये मुद्दा मैंने जैसे कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री वाला जो जोन बताया था उसमें क्या बोला था कि जब इंडस्ट्री आई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ा, हमारे लघु और कुटीर उद्योग पे। ये एकदम ठप हो गए, और जो उस वक्त पे वो जो ठप हुए तो अब तक नहीं बढ़े। और आज भी आप कभी जाएंगे, ऑब्वियसली आप जब दिवाली वगैरह पे भी निकलो या किसी भी त्यौहार पे, तो आप देखेंगे कि हम अगर वो सामान लेने भी जाए ना, आज की डेट में अगर हम वो सामान लेने भी खरीदने जाते भी हैं, तो वो सामान हमें फिर भी महंगा लगता है। उनके हिसाब से महंगा नहीं है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ रॉ मटेरियल्स में लगाया है, प्लस में अपनी कला भी लगाई है, तो इसीलिए वो जो रेट बताते हैं वो उनके लिए एकदम सही है। लेकिन हमको वो कॉस्टली पड़ता है क्योंकि हमें उसे ऑल्टरनेट हमारे पास बहुत है, राइट। जिस वजह से अगर मैं कहूँ कि उन्हें बहुत अच्छा, आज़ादी के बाद भी, अंग्रेज़ों के बाद भी उन्हें वो पेस, वो रफ्तार नहीं मिल पाई है ग्रोथ करने के लिए जो उन्हें पहले अंग्रेज़ों से गुलामी के दौर से पहले मिला करते थे, क्योंकि पहले लोगों के पास ऑप्शन ही वही था कि हाँ ज़रूरत है तो वही से कहीं से ख़रीदना होगा। और अब नहीं, अब क्योंकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज भी आई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, है ना। जैसे दीप जलाने के लिए सिर्फ हम पहले अर्थन लैम्प्स यानी कि दियो पे ही जो है बेस थे, अब हमारे पास लाइट्स हो गई हैं। तो हम सिर्फ नीड के लिए अपने जितने भी हमारे ट्रेडिशनल थोड़े फॉलो करने के लिए रूल्स को हम दिए खरीदते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से है। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी इन सब चीज़ों के लिए क्या इनिशिएट किया है, क्योंकि एक तरीके से हमारा ट्रेडिशन है, हमारा ट्रेडिशन है, और क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारी इंडिया की जो है 70% कह सकते हैं, ये हमारे प्रोफेसर ने हमें अपने टाइम पे जब हम कॉलेज में थे, और ये इतना टाइम पुराना नहीं है, अभी कुछ ही सालों का है, लेकिन ये चीज़ हमें बताई थी कि जो पूरा इंडिया है ना उसका 30% जो है वो इंडिया है, और 70% जो है वो अभी भी भारत है। तो वो लोग जो हैं वो अभी भी इसी चीज़ पे डिपेंड है। आप देखेंगे अगर अपने गाँव में जाके तो अभी भी जो है लोग खेती करते हैं, बेशक उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं है, फिर भी वो खेती ही करेंगे। क्योंकि क्यों, क्योंकि उनको आती ही खेती है, उन्होंने अपने दादा परदादा हर जगह से, वो या कह सकते हैं अपने ट्रेडिशन से उन्होंने वही चीज़ देखी है, इसीलिए वो खेती ही उन्हें आती है। ओके, वैसे ही जिसने हमेशा से लघु कुटीर उद्योग का काम किया है, जिसमें कोई चीज़ बुनना या सिलना या कुछ भी ऐसा आता है, उन्हें वही काम आता है, वो स्किल में माहिर है, उन्हें उनके अलावा और कोई नहीं आता काम। तो उनके लिए क्या एक्सपोजर देती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट पहले वाली जो गुलामी के वक्त थी वो किस लिए थी, वो एक तरीके से लूटने वाली थी, क्रूर गवर्नमेंट जिसे कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वो हमें सर्विस देती है, इन द सेंस कि हमारे लिए प्लान प्रोग्राम्स, और जितने भी पिछड़े लोग हैं ना, जो पिछड़ चुके हैं इस इंडस्ट्री के उससे कह सकते हैं, उनके लिए प्लान बनाती है। तो लघु कुटीर उद्योग के लिए ये है कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाए जाते, मतलब कि जो अगर हम अदर प्रोडक्ट्स की बात करें कि टैक्सेस लगाए बगैर कोई भी प्रोडक्ट जो है उसे नहीं बेचते, तो इनके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगाया जाता है। और उसके बाद जितने भी इनके कह सकते हैं यूजेस है, या और ज़्यादा इसको अगर आप कभी भी देखें गवर्नमेंट साइट्स पे, या फिर बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है जैसे ट्राइब्स इंडिया हो गया, ये जो सबसे ज़्यादा मेरे को ध्यान है कि ट्राइब्स इंडिया एक ऐसा है जो ऑनलाइन पोर्टल है इन सारी चीज़ों को बेचने का, जिसमें सिर्फ कह सकते हैं कि मिट्टी की ही चीज़ें नहीं होती है, इसमें बहुत सारे और भी चीज़ होती है, नेकलेस हो गया, इसमें कह सकते हैं हमारे बास्केट साड़ियाँ जितने भी हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो सारी ट्राइब्स इंडिया। और ट्राइब्स पता चल रहा है ना कि ट्राइब्स क्या होता है, ट्राइब्स, ओके, ट्राइब्स आप सबने मन में सोच लिया होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस चीज़ से बेस्ड है, लोकल लोकल इलाके से, लोकल पीपल जो होते हैं, ये जो वहाँ से बन के सामान आता है ना वो सारा वो बेचते हैं किसको, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट फिर उसको क्या करती है, ऑनलाइन लिस्टिंग के थ्रू पे और अपने साइट पे फिर वो चीज़ें वो बिकवाती है। लेकिन अब इसका भी एक ड्रॉबैक क्या है, इसका भी एक ड्रॉबैक ये है, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें होती हैं तो उसमें जितना भी कह सकते हैं उस इंसान ने एफर्ट किया है उसे बनाने का, उसका अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जितना नॉर्मल प्राइस पे वही सेम सामान आता है उससे ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसमें से जो GST वाला रेट होता है वो थोड़ा कम करती है, उसके साथ वो अपनी सर्विसेज का प्राइस उसमें ऐड नहीं करती है, जिससे जो रेट है या जो प्राइस है उस सामान के वो बैलेंस हो जाए। और इस तरीके से कह सकते हैं ये तो सिर्फ एक इनिशिएट है जिसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं कुछ नेशनल लेवल पे कुछ स्टेट लेवल पे, जिससे लघु कुटीर उद्योग को जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं किक स्टार्ट मिला है। चलिए बाकी जो हाफ चैप्टर है हमारा वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिए। और इसमें आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ इसके लिए एक एग्जांपल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है, देखने में ऐसा लग रहा है या सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसके अगर कोर में जाएँ ना एकदम गहराई में, तो इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेट होती हैं और आप बहुत सारी चीज़ सर्च करके अपना जो आंसर है ना आंसर राइटिंग उसको बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा कह सकते हैं कंटेंटफुल बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ये कीजिए एंड कीप लर्निंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।